वैधवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो वज्जायाणम्। नमो लोये सौवसाऊनम्। अनुभागभागमेतो विजत्थदोषस्य सम्भवो नत्ति। कम्पणमियदिननाहम् यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जेढोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति उषो आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। नवी पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 86 पर आ गए, 86। अल्प बहुत्व का प्रकरण चल रहा था, उसमें पहले हमने उत्कृष्ट अनुभाग संबंधी अल्प बहुत्व देखा और अभी हम जघन्य की बात देख रहे थे। हाँ, देखो हम यहाँ से देखते हैं। पहले जघन्य का अल्प बहुत्व, सबसे जघन्य है लोभ संज्वलन
लोभ का,
83 पेज से शुरू था। फिर माया संज्वलन, मान संज्वलन, क्रोध संज्वलन। पांचवे नंबर पर सम्यक्त्व का जघन्य लिया। छठवे नंबर पर पुरुष वेद का जघन्य लिया। सातवे नंबर पर सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य लिया और आठवे नंबर पर अनंतानुबंधी मान का जघन्य लिया। हाँ, इसी के बारे में आपको प्रश्न था। हाँ, 287 नंबर का पॉइंट यानी अनंतानुबंधी का मान का जघन्य है, इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग विन्यास मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से अनंत गुणाहीन होकर अवस्थित है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कैसे तैयार हुई है, तो मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से भी अनंत गुणहीन हो गया अनुभाग और वो प्रकृति तैयार हुई है। तो सर्वघाती, परंतु जब हम दारू भाग लेते हैं तो उसका अनंत वा भाग तो देशघाती है, उसके ऊपर का फिर अनंत वा भाग वो सम्यक मिथ्यात्व है और उसके ऊपर अनंत बहुभाग है वो मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से भी सम्यक मिथ्यात्व के जो स्पर्धक है सभी वो अनंत वे भाग प्रमाण है। उसका उत्कृष्ट भी ले लेंगे तो अनंत विभाग प्रमाण ही होगा। एक बात तथा, अब यहां हमने किसके साथ कंपेयर के लिए, सातवें नंबर पर तो सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य था, वो जघन्य कब प्राप्त हुआ था, तो क्षपणा में प्राप्त हुआ था। तो क्षपणा में क्या हुआ था, तो हजारों बार अनुभाग कांडस्थ हुए थे, इसलिए कहते हैं दर्शन मोहनी की क्षपणा में संख्यात हजार प्रमाण अनुभाग कांडकों के घात से जघन्य पने को प्राप्त हुआ है। कौन? सम्यक मिथ्यात्व। अब उसके साथ हमें अनंतानुबंधी के मान को कंपेयर करना है, परंतु अनंतानुबंधी मान का जघन्य अनुभाग विन्यास यद्यपि नवक बंध रूप है, यह कब होता है, तो विसंयोजना के बाद जब संयोजना होती है तब की बात है ये। और ये नया बंधा हुआ है पहले समय में, उसकी बात है। और जहां से सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का प्रारंभ होता है, जहां से यानी अभी हम स्पर्धक रचना याद करेंगे, जहां उसका जघन्य है, सम्यक मिथ्यात्व का जहां जघन्य है, वहीं से इसका प्रारंभ हुआ है। तो भी देखो, सर्वघाती का जघन्य एक ही पॉइंट पर है ना सबके, ये यहां से ऊपर सर्वघाती और नीचे देशघाती, कषायों में भी यहाँ के ऊपर सर्वघाती, नीचे देशघाती। अब ये सम्यक मिथ्यात्व का, ये सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट और ये जघन्य और ये अनंत अनुबंधी का जघन्य। तो कहते यद्यपि वो नवक बंध रूप पर जहां से सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का प्रारंभ होता है वहीं से इसका प्रारंभ हुआ है, तो भी मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से लेकर उसके ऊपर भी अनंत स्पर्धकों तक यह पाया जाता है तथा इसका घात भी नहीं हुआ है, इसलिए यह अनंत गुणा है। ये जो नया, जो इसका जो नया बंध है ये तो यहाँ कहीं पाया जाता है, ये भी जघन्य ये भी जघन्य, परंतु मिथ्यात्व के अनुभाग से, जघन्य अनुभाग से भी अधिक वाला है, इसलिए वो सम्यक मिथ्यात्व से अनंत गुणा पाया जाता है तथा इसका घात भी नहीं हुआ है। सम्यक मिथ्यात्व में अनुभाग कांडक घात हुए थे और ये जो बंधा हुआ है अभी नया नया बंधा हुआ, इसलिए इसका इतना घात ही नहीं हुआ है। जो बंधा है द्विस्थानगत उतनी ही बात है यहाँ पर, इसलिए वो अनंत गुण है। तो दोनों द्विस्थानगत फिर भी वो अनंत गुण है, ये बात बता रहे, ख्याल में आई बात। ये भी द्विस्थानगत है और वो भी द्विस्थानगत है क्योंकि वो भी दारू रूप है, फिर भी वो इससे अनंत गुणा है क्योंकि एक एक दारू रूप का हो, अस्थि रूप का हो, एक एक में अनंत अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं। मिथ्यात्व के जगन यानी सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट से भी ये ऊपर है, उसके भी ऊपर है, सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट से भी ये ज्यादा है। अब उससे, इसके साथ कंपेयर करते हुए अनंतानुबंधी क्रोध का जगन्य उससे विशेष अधिक है, फिर माया का उससे विशेष अधिक है, लोभ का उससे विशेष अधिक है। हमने कल पढ़ा था इसलिए मैं केवल सूत्र सूत्र पढ़ रही हूँ। उसके बाद हमने 12वें नंबर पर हास्य का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा देखा था, उसका कारण क्या बताया था कि अनंत अनुबंधी जो लोभ है वो नया बंधा हुआ है, जघन्य अनुभाग है उसमें,
ये पुराना बंधा,
और ये जो हास्य का जघन्य है वो प्राचीन सत्ता रूप है, उसके नवक बंध की वहां बात नहीं होती है, उसे सत्ता में पड़ा है। इसका बंध कब रुकता है लोभ का, ये सॉरी हास्य का,
आठवीं
गुणस्था। अब आगे पढ़ेंगे हम, 12 पॉइंट्स दिए थे ना हमने, 12 नंबर, रति ये जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे रति का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि सर्वत्र रति पूर्वक ही हास्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। हास्य रति साथ में होती है और रति पूर्वक हास्य होता है। दुगुण छाए जहन्न अनुभाग संकमो अनंत गुण, उससे जुगुप्सा का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि यह अत्यंत अप्रशस्त है। ये तो अप्रशस्त है ना, वो तो हास्य रति तो प्रशस्त थे, ये तो अत्यंत अप्रशस्त है। भयस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे भय का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि जिसे जुगुप्सा हुई है वह मात्र जुगुप्सा के स्थान का त्याग करता है। ओ, परंतु भयवश यह प्राणी प्राणों तक का त्याग कर देता है। कैसी कारण मीमांसा बताए ना, यानी कोई गंदा गलित स्थान है तो उस स्थान को छोड़कर हम अन्यत्र चले जाते हैं, परंतु भय के कारण तो जीव प्राण भी त्याग सकता है। अतएव जुगुप्सा से इसका तीव्र अनुभव जानना चाहिए। सोगस्य जहन्न अनुभाग संक्रमो अनंत गुणों, उससे शोक का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि यह 6 माह तक तीव्र दुख का कारण है। शोक जो हमने देखा है ना
राम के,
राम के हाँ, इन्हें बाद में तो अधिक से अधिक तो इतने तक है, बाद में बदल जाएगा वो, तीव्र हुआ है तीव्र, ये दिखता भी नहीं इतना छोटा।
कि एक समय जो उदय में आता है उसकी छह मास तक सफर रहती है, इसे बताना चाहते हैं?
यानी छह माह तक वो दुख का कारण है, वो शोक,
इसलिए वो बलदेव को लेने घूमते हैं ना।
हाँ, वो राम की बात आती है ना, हाँ, कोई भी हर एक में, हाँ, छह महीने दिन अरदिये जहन्न अनुभाग संकमो अनंत गुणों, उससे अरति का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि यह शोक से भी आगे का कारण है। इत्थि वेदस्य जहन्न अनुभाग संकमो अनंत गुणों, उससे स्त्री वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि अंतर्मूर्त पूर्व ही इसका क्षय हो जाता है। इसका समझ में है, अंतर्मूर्त पूर्व ने कहाँ पर?
नपुंसक
पहले स्त्रीवेद का क्षय होने के अंतर्मूर्त के बाद छह नौकषायों का क्षय होता है, इसलिए उनका जघन्य तो एक अंतर्मूर्त के बाद है, और स्त्रीवेद का जघन्य एक अंतर्मूर्त पहले है क्षपणा में। ख्याल में आई बात?
छह नौकषा,
जितना काल चला जाता है उसकी विशुद्धि और बढ़ेगी और आगे वाले कर्मों का अनुभाग और घटेगा। छह नौकषायों की क्षपणा में उसके भी अनुभाग कांडक हुए ना, तो स्त्रीवेद के क्षपणा के समय जितना अनुभाग था हास्य का या रति का या अन्य कषायों का, एक अंतर्मूर्ति के बाद वो कितना गढ़ गया, उसके साथ स्त्रीवेद का अनंत गुणा है, क्योंकि उसकी क्षपणा बाद में है, जो सबसे अंत में क्षपणा होता है उसका अनुभाग सबसे कम है, इसलिए हमने लोभ को पहले नंबर पर लिया, फिर उल्टे क्रम से हम माया, फिर मान, फिर क्रोध, फिर पुरुष वेद, ऐसा देखते हैं। बीच में हमने समय का समय मिथ्यात्व को फिट किया था, फिर अनंत अनुबंधी को किया था, तो यहाँ स्त्री वेद का हमने देख लिया। 18 नंबर डाला ना, कितना नंबर है आपका?
18
नौ से वेदस्य जहन्न अनुभाग संकमो अनंत गुणों, उससे नपुसक वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि वो और भी अंतर्मूर्त पहले उसको होता है, क्योंकि स्त्री वेद का अनुभाग कारिष की अग्नि के समान है। देखो ये ऐसा उदाहरण तो पहले भी हमने पढ़ा था, परंतु नपुसक वेद का अनुभाग अवाकी अग्नि के समान है, इसलिए अनंत गुणा है। ये कारिष क्या होता है और अवा क्या होता है?
एक तो ईट है,
हवा यानी ईट, और कारिश यानी वो तो छाना, क्या कहते हैं आप? हाँ, क्या कहते हैं उसको? कंडा, गोबर नहीं कहेंगे उसको, हम गौर्या कहेंगे मराठी में, छाना कहते हैं, गुजराती में छाना कहते हैं, खास
हिंदी में
कंडा, कंडा कारिश यानी कंडा, और मराठी में गौरी, गौर्या कहते हैं ना, गौरी, और अवाय ने ईट। ये तो जल्दी लगती है और बुझ भी जाती है ना कारिश की, और ईट गर्म करो तो
ईट लंबे
काल तक, वो भट्टी में डालो तो कितने काल तक वो तो ऐसे कोयले जैसे रहेगी। हाँ, हाँ, तृण वाला वो, उसकी बात यहाँ नहीं ली है, वो तो तृण की अग्नि के समान उसको उदाहरण दृष्टांत दिया है। ये नपुसक वेद के बाद अभी अपचक खान मानस जहन्न अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे अप्रत्याख्यान मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। उल्टे क्रम से हमें अल्प से बहुत्व की ओर है, पहले मान, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ ले लिए, क्योंकि इसका जघन्य अनुभाग, अभी ये बीच वाले आठ कषाय है, तो इसका जघन्य अनुभाग सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अत समुत्पत्ति कर्म रूप से प्राप्त होता है, और किसका होता है?
मिथ्यात्व,
मिथ्यात्व मिथ्यात्व और आठ कषायों का सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त में हत समुत्पत्ति क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। और नपुसक वेद का जगन्य, क्योंकि इसके पहले हमने नपुसक वेद के साथ इसकी कंपेयर की है, और नपुसक वेद का जगन्य अनुभाग संक्रम अंतरकरण करने के बाद घात करने से जो शेष बचता है तत्प्रमाण है, क्योंकि अंतरकरण के बाद वहां तो कितने अनुभाग कांडक हो चुके हैं, तो उसका घात अधिक हुआ है, एकेंद्रिय से भी उसका अधिक हुआ है, एकेंद्रिय में जो जगन्य जगन्य अनुभाग है उससे भी वो क्षपणा के काल में उसका अनुभाग और हीन हो गया है। इसलिए नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग संक्रम से अप्रत्याख्यान मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा सिद्ध होता है, यानी वो एकेंद्रिय में अनंत गुणा है और नपुसक वेद की क्षपणा में उसका अनंत वे भाग प्रमाण है, यह न्याय प्राप्त है। प्रा बराबर करना, बीस हो गए। कोहस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, अभी सभी अनंत अप्रत्याख्यानावरण ही चार लेने, मान फिर क्रोध माया और लोभ, और ये सारे विशेष अधिक ले लेंगे। तो 21वें नंबर पर उससे अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। मायाए जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान माया का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। लोभस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है, वो विशेष हुआ है। ये तीनों सूत्र सुगम है, क्योंकि बंधते समय ही इस अनुभाग के ऑर्डर से बंधे थे। लोभ में ज्यादा था हमने देखा था ना, फिर भी संज्वलन में लोभ को सबसे कम इसलिए कहा कि क्षपणा में उसका सर्व सबसे अंत में उसकी क्षपणा हुई है, इसलिए उसका अनुभाग बहुत कम हुआ है। पच्छक खान मानस जहन्न अनुभाग संकमो अनंत गुण, उससे प्रत्याख्यान मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि अन्यथा यह सकल संयम का घातक नहीं हो सकता। अनुभाग ज्यादा है इसलिए कहते सकल संयम का घातक है, और देश संयम का घात करने वाले अप्रत्याख्यान लोभ के जघन्य अनुभाग से इसे अनंत गुणा नहीं माना जाता है, तो देश संयम से अनंत गुणे सकल संयम का घात इसके द्वारा नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा मानना निषिद्ध है। कारण मीमांसा, हाँ लॉजिकली बता रहे हैं। अब आगे कोहस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। मायाए जघन्य अनुभाग चाहिए, जघन्नाण हुआ है ना, जघन्नाणु चाहिए। ऊपर सूत्र में पहली लाइन जघन्नाणु मायाए जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान माया का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। 26 नंबर पर आए हम। लोभस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान लोभ का जघन्य ध हुआ अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं। अभी एक अकेला रह गया 28 नंबर का, मिच्छत्तस्य जहन्न अनुभाग संकमो अनंत गुण, उससे मिथ्यात्व का जघन्य अनुभव संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि सकल पदार्थ विषय श्रद्धानुरूप परिणामों का रोकने वाला होने से, यानी मिथ्या श्रद्धा नहीं ना, सकल पदार्थ विषय श्रद्धा रूप परिणामों को रोकने वाला होने से महत्व को प्राप्त हुए, महत्व यानी उसकी जो इंटेंसिटी ज्यादा है, इसके अनंत गुणे होने में कोई विरोध नहीं आता। महत्व यानी इंपॉर्टेंस नहीं, महत्व यानी उसका अधिकता,
ये पहली बार लॉजिक से बात हो रही है।
हाँ, लॉजिक से ही बता रहे हैं ना,
नहीं कर्णाधिवेक में नहीं तो लॉजिक नहीं लगता है ना,
लॉजिक लगता है परंतु हर बार वो लगा के नहीं दिखाएंगे। हाँ। यानी अभी कितनी हाइट है किसी पर्वत की, उसमें क्या लॉजिक लगना है, जहाँ लगाना है वहाँ लगाएंगे। हाँ। देखो ये फिर हमने जघन्य का देख लेते हैं, सबसे पहले किसको लिया था, जो सबसे अंत में सपना संज्वलन
लोभ,
फिर माया,
माया
फिर मान,
फिर क्रोध,
चार तो ये लिए,
पीछे सम्यक्त्व।
हाँ। उसके बाद सम्यक्त्व का जघन्य लिया,
पीछे पुरुष,
फिर पुरुष वेद को लिया,
सम्यक,
फिर सम्यक मिथ्यात्व को लिया, ये दो बिटवीन डाल दे, पहले चार संज्वलन लिए, फिर सम्यक्त्व, पुरुष वेद, सम्यक मिथ्यात्व,
पीछे
उसके बाद अनंतानुबंधी, क्योंकि विसंयोजना में संयोजना में होता है जघन्य बंध होता है, पहले मान क्रोध माया और लोभ, ये अनंता, फिर बीच में ये हास्यादि नौकशाय लेना
है,
नौकशाय वहाँ बीच में लेंगे, बाकी नौकशाय एक पुरुष वेद को पहले लिया था।
हाँ।
बाकी को यहाँ लेना है, तो पहले में पहले प्रशस्त लेना है।
हाँ, तो रति
हास्य, फिर
रति
जुगुप्सा भय शोक और रति, ये छह हो गए, फिर दो वेद रहे थे स्त्री वेद और नपुंसक वेद। उसके बाद अप्रत्याख्यान के चार, मान क्रोध माया लोभ, फिर प्रत्याख्यान के चार और अंत में मिथ्यात्व, ये 28 हो गए। इस प्रकार ओघ से जघन्य अल्प बहुत्व का कथन करके आगे आदेश का कथन करने के लिए आगे की सूत्र परिपाटी का कथन करते, निरय गये सवत्थो सम्मतस्य जघन्य अनुभाग संकमो, क्यों
सपनावत
एक कृतकृत्य वेदक होकर वो एक अंतिम समय ना अवली प्लस एक समय, अन्य तो किसी की सपना नहीं है, यहाँ पर एक सम्यक्त्व ही है जिसका अनुभाग जघन्य में जघन्य यहाँ नरक में हो सकता है। मंजूबेन कौन से नरक तक हो सकता है, पहले ही। हाँ, क्योंकि कृतकृत्य वेदक वहीं पर जा सकता है, इसलिए तो नरक गति में सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग संक्रम सबसे स्तोप है, क्योंकि यह देशघाती एक स्थानिक स्वरूप है, एक स्थानिक हो गया वो, इसलिए उसको सबसे अल्प ले लिया। सम्मा मिच्छत तस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणों, उससे सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि यह सर्वघाती द्विस्थानिक स्वरूप है।
अनंतानुबंधी को नहीं दिया,
तीसरे नंबर पर
अनंतानुबंधी,
अनंतानुबंधी मानस जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे अनंतानुबंधी मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग से अनंत गुण स्वरूप से अवस्थित मिथ्यात्व के जघन्य स्पर्धक से लेकर उससे भी ऊपर अवस्थित हुए इस अनुभाग के सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग संक्रम से अनंत गुणे सिद्ध होने में कोई रुकावट नहीं है। अब आगे कोहस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम, ध कहा है जघन्य, विशेष अधिक है। माया ये जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी माया का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। लोभस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। उद्दी दिख रहा है, विशेष अधिक है। ये सूत्र सुगम है। कहते उससे हास्य का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। अब डायरेक्ट इसको हास्य को ले लिया यहाँ पर। अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति कर्म से अनंत गुणे हीन नवक बंध अनुभाग संक्रम रूप है, और यह सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अनुभाग से अनंत गुणा है। हास्य का क्या कहना चाहते हैं, जो विसर्जना के बाद संयोजना होती है वहाँ जो नया बंध है वो कहते हैं कि हत समुत्पत्ति वाले कर्म से अनंत गुणे हीन वाला है, और ये जो हास्य का जो है वो अनंत गुणा है। क्यों? क्योंकि यह असंगी पंचेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्ति कर्म के साथ नारकियों में जघन्यपने को प्राप्त हुआ है। यह हास्य का जघन्य किसको है? जिसने असंगी पंचेंद्रिय में उसके योग्य घात किया है और बाद में यहाँ आया है, उसको भी हत समुत्पत्ति कहेंगे। परंतु वो हत समुत्पत्ति असंगी के असंगी पंचेंद्रिय के योग्य है। एकेंद्रिय में जाएगा तो और घटाएगा, असंगी पंचेंद्रिय इतना अधिक नहीं घटा सकता, इसलिए उसकी अपेक्षा जो उसने घटाया है और नरक पहले नरक में आने पर उसका जघन्य यहाँ होगा, वो भी इसकी अपेक्षा से अनंत गुना है। रदीय जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणो, उससे रति का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। कहते यद्यपि हास्य के जघन्य अनुभाग संक्रम और रति के जघन्य अनुभाग संक्रम के स्वामी में भेद है, फिर भी उससे आगे का कारण होने से, आगे का कारण है रति जो है वो हास्य का कारण पहले हमने देखा था ना, इसके अनंत गुणे होने में कोई विरोध नहीं आता। पुरुष वेदस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे पुरुष वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। यहाँ पर कारण यह है कि रति रमण मात्र को उत्पन्न करने वाली है, परंतु पुरुष वेद वेद हुआ पुरुष वेद पलाल की अग्नि के समान शक्ति विशेष रूप है, कहीं उसको तृण की अग्नि भी कहते हैं, वृक्ष विशेष है पलाल। यह शास्त्र में तो तृण की अग्नि कहाँ है, यानी जो सूखे सूखे तृण है, सूखा घास, सूखे पत्ते ही कहते ना पलाल, तृण या सूखे पत्ते ले लेना। शक्ति विशेष रूप, इसलिए इनके स्वामी में भेद न होने पर भी उससे इसका जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, यह सिद्ध होता है। इति वेदस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे स्त्री वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि यह कारिष की अग्नि के समान तीव्र परिणामों से उत्पन्न होता है। आप कहेंगे नरक में इनका उदय कहाँ है, उदय की बात नहीं, अनुभाग संक्रम की बात है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों में जो संक्रमण चलता है अपकर्षण आदि, उसकी बात यहाँ चल रही है। दुगुण छाए जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणा, नंबरिंग किया था क्या,
11
नंबर, उससे जुगुप्सा का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि प्रकृति विशेष होने से ही वह इस प्रकार से अवस्थित है। भयस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणो, उससे भय का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, यह सुगम है, क्योंकि ओघ प्ररूपणा में जो इसका कारण बतलाया है उसी प्रकार का कारण यहाँ भी प्राप्त होता है। मैंने कहा ना, वह तो जुगुप्सा के कारण स्थान बदलता है, परंतु इसके कारण तो
मरण हो जाता है।
मरण तक स्वीकार करता है। सोगस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे शोक का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। यह भी सुगम है, क्योंकि ओघ प्ररूपणा में इसके कारण की सिद्धि कराया है। वो छह महीने की बात बताई थी वहां पर। अरदीय जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणो, उससे अरति का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। यह भी सुबोध है, क्योंकि ओघ प्ररूपणा में इसका कारण कहा है। वो आगे तक चलती है, ऐसा कहा था उसने। नपुसक की बात करेंगे अभी। नऊ से वेदस जहन अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे नपुसक वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि अवाकी अग्नि के समान परिणाम इसका कारण है। अपच्चक खान मानस जहन अनुभाग संक्रमो अनंत गुण, उससे अप्रत्याख्यान मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि नौ कषायों के अनुभाग से कषायों का अनुभाग अधिक है। यह न्याय सिद्ध बात है। ये मान लिया ना अभी हमने। कोधस्य जहन अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। मायाय जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान माया का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। लोभस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे अप्रत्याख्यान लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। ये तीनों ही सूत्र सुगम है। अब प्रत्याख्यान के चार अब ले लेंगे। प्रत्याख्यान पच्चखन मानस जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणो, उससे प्रत्याख्यान मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि अन्यथा यह मान सकल संयम का घाती नहीं हो सकता। ये इसी से सिद्ध होता है कि उसका अनुभाग जघन्य भी अनंत गुणा है, इसलिए वह पूर्वोक्त से अनंत गुणा सिद्ध होता है। कोहस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। मायाय जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान माया का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। लोभस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेषायो, उससे प्रत्याख्यान लोभ का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। प्रकृति विशेष मात्र कारणों की अपेक्षा रखने वाले ये तीनों ही सूत्र सुगम है। अने अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान में उसका अनुभाग ज्यादा है। ये प्रत्याख्यान लोभ हो गई ना अभी। अब उसके बाद मान संजलनस्य। देखो अन्यथा हमने मनुष्यों में तो पहले अल्प में तो पहला लोभ, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध लिया था। यहाँ तो संजलनों में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। कोई क्षपणा का कार्य तो यहाँ ही नहीं है, इसलिए भी इसको ले लिया। तो मान संजलन से जहन अनुभाग अणु करना, जहन नान हुआ, जहन नानुभाग संकमो अनंत गुण। इसमें 24 नंबर डाला ना, कितने नंबर, कौन सा नंबर है
24
मान। हाँ, मान संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि यथाख्यात संयम का घात करने वाली शक्ति से युक्त है। आप कहेंगे मनुष्यों में नहीं थी कि यहाँ कैसे हो गए, परंतु वहां उसके अनुभाग कांडक घात हुए है। अनुभाग कांडक घात हुए थे तभी जाके जघन्य मनुष्यों के लिए जघन्य, यहाँ नारकियों के लिए जघन्य की बात चल रही है। गोह संजलन से जहन अनुभाग संकमो विशेष आयु, उससे क्रोध संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। माया संज्वलन से जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेष आयो, उससे माया संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है। लोभ संज्वलन से जघन्य अनुभाग संक्रमो विशेष आयो, उससे लोभ संज्वलन का जघन्य अनुभाग संक्रम म करना, स हो गया ना, अनुभाग संक्रम विशेष अधिक। यहाँ पर सर्वत्र प्रकृति विशेष ही विशेष अधिक होने का कारण जानना चाहिए। और विशेष का प्रमाण अनंत स्पर्धक है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि एक एक स्पर्धक में भी अनंत अनंत वर्गना होते हैं, यहाँ तो अनंत स्पर्धकों की बात है। मिथ्यत्वस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणम, उससे मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है। 28 नंबर पर मिथ्यात्व, यहाँ भी ये नरक गति के 28 लगा लिए। अभी 92 पृष्ठ पर आते हैं। मिथ्यात्व का जघन्य सबसे अनंत व अनंत गुणा कहने का कारण कह रहे हैं, क्योंकि सकल पदार्थ विषयक श्रद्धान लक्षण सम्यक्त्व संज्ञा वाले जीव गुण का घात अन्यथा बन नहीं सकता। जीव के गुण को ही सम्यक्त्व कहा है,
या जीव गुण,
जीव गुण, हाँ वहाँ तो उसके सकल पदार्थ विषयक श्रद्धान लक्षण जो सम्यक है, वहाँ केवल सकल पदार्थ विशेष श्रद्धान का घातक इसका ही काम। तो सम्यक तो संज्ञा वाला जो जीव का गुण है, यानी सभी पदार्थों के श्रद्धान, उसका नाम है सम्यक्व। और इस सम्यक्व नाम का एक जीव का गुण है, उसका घात अन्यथा बन नहीं सकता। इस प्रकार ला का करना प्रलार हुआ, इस प्रकार पांचवी पुस्तक में नहीं, अपनी करेक्शन करो, सेकंड लाइन में। इस प्रकार सूत्रकार ने सामान्य से नारकियों में अल्प बहुत्व का कथन किया। सामान्य से क्यों कहा, क्योंकि पहली से सातवीं तक सामान्य बात की, क्योंकि उसने सम्यक्त्व को पहले पॉइंट पर रखा था। इसे ही पहली पृथ्वी में करना चाहिए, वहां तो घटित होगा ये सब कथन, क्योंकि ओग प्ररूपणा से इसमें कोई विशेषता नहीं है। ओग प्ररूपणा यानी सामान्य से नारकी, उसको यहाँ ओग कहा। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार कथन करना चाहिए। अब शेष गतियों में भी कुछ विशेषता को लिए हुए सामान्य नारकियों के समान आलाप करना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। नारकीय हुआ है, नारकी उसके ऊपर वो चंद्र नहीं चाहिए, बिंदी और चंद्र, यानी ये पहली पृथ्वी में तो घटित होगा, दूसरी से नहीं, वहाँ तो ये सम्यक प्रकृति का वो जगने वाला वो घटित नहीं होगा।
नहीं होगा ना, वो द्विस्थानी है, सम्यक तो का जगन्य होगा।
अच्छा, सम्यक को ही जगन्य होगा,
दूसरे पृथ्वी में भी वही बताया ना उन्होंने।
हाँ, परंतु वो वाला कृतकृत वेद वाला नहीं होगा,
नहीं होगा,
स्वामी बदल जाएगा। स्वामी तो कोई भी जीव ले लेंगे वहाँ, हमेशा वो कम ही होगा। पहले नरक में कृतकृत्य वाला स्वामी है, और यहाँ
अनुभाग वो अनंत गुणाहीन हो जाएगा।
बराबर, जहाँ निरय गई है तहाँ शेषा सुगति से, जिस प्रकार नरक गति में अल्पभूतों कहा है, उसी प्रकार शेष गतियों में उसका कथन करना चाहिए। अल्पभूतव ले जाना चाहिए इस वाक्य का आधार अध्याहार, अध्यारणी कंटिन्यूटी, यहाँ पर करके सूत्र के अर्थ की समाप्ति करनी चाहिए। इसलिए इस देशामर्शक सूत्र में गर्भित हुए अर्थ का विवरण करते हैं, यथा मनुष्य त्रिकने ओग के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इन्हें भी डिफरेंस बताएंगे। पहले तो समान है ऐसा कहेंगे, अब उसमें जो कोई डिफरेंस है वो अब बताएंगे। मनुष्य नियो में पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग संक्रम को रति के ऊपर अनंत गुणा करना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका चरण उपकर्षण के साथ प्राचीन सत्कर्म रूप से जघन्यपना पाया जाता है। मनुष्यनी के लिए ये कारण बताया, क्योंकि मनुष्यनी जो है वो पुरुष वेद की क्षपणा उसकी तो छह नौकषाय के साथ हो जाती है, और पुरुष वेद सही चरता है उसके तो नवक बंध का जो जघन्य अनुभाग बंधा है उसके संक्रमण में हम उसको जघन्य कहेंगे। इसलिए मनुष्यों में जो है वो रति के बाद इसका नंबर है अनंत गुणा। पहले हमने हास्य लिया था, फिर रति लिया था, उसके ऊपर पुरुष वेद को रखना, क्योंकि यहाँ जो पुरुष वेद का है वो प्राचीन सत्कर्म, उसके साथ साथ इसका भी यहाँ क्षपणा होती है। सामान्य तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सामान्य नारकियों के समान भंग है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट के समान भंग है। अब शेष मार्गणाओं के देशामर्शक रूप से एकेंद्रियों में अल्प बहुत्व कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सभी मार्गणाओं को नहीं लगाएंगे, अभी एकेंद्रियों में बता रहे हैं। एइंद्रियेषु सवत्थो सम्मत्तस्य जघन्य अनुभाग संक्रम। एकेंद्रियों में सम्यक्त्व का जघन्य अनुभाग संक्रम सबसे स्तोक है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि उसका द्विस्थानिक है। यानी यह कहा तो है सम्यक्त्व का जघन्य, परंतु जो कोई सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है वही इसके लिए जघन्य भी कहलाए। क्या अलग से होगा कुछ
नहीं,
वही तो होगा ना, उत्कृष्ट ही है थ्रू आउट, तो उसी को जघन्य कहेंगे हम। यहाँ अन्य की अपेक्षा उसी को यहाँ जघन्य में ले लिया, उसके योग्य जघन्य कहो उत्कृष्ट कहो यही एक है, उसके लिए अन्य कोई ऑप्शन नहीं है। तो सम्यक्त्व को पहले पॉइंट पर लिए। सम्मा मिच्छत्तस्य जघन्य अनुभाग संकमो अनंत गुणों, उससे सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, जिसको हम दोनों का उत्कृष्ट होता ऐसा कहते हैं। उद्वेदना में वो पैकेंद्र में आएगा, परंतु हम देखते ना ये नीचे है वो सम्यक प्रकृति है और उसके ऊपर अनंत गुणा है वो सम्यक मिथ्यात्व। तो इसलिए उसको अनंत गुणा कहा। हस्तस्य जघन्य अनुभाग संकमो अनंत गुण। एक स्थानिक तो जघन्य होता है, यहाँ तो उत्कृष्ट ही होगा उसका, ओग की अपेक्षा वो उत्कृष्ट ही है क्योंकि उद्वेलना करते करते यहाँ आया है। तो उसका थ्रू आउट सम्य दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, जब तक क्षपणा नहीं करता है तब तक उसका उत्कृष्ट है, परंतु ओग से उसी को उत्कृष्ट उसी को जघन्य कह दिया, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं वहां पर, एक ही अनुभाग समान होगा सर्वत्र। यानी हम केवल इतना ही लिख सकते हैं सम्यक्त्व का जो जगन जो अनुभाग है उससे सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणा है। हस्यस्य जघन्य अनुभाग संक्रमो अनंत गुणा, उससे हास्य का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और हास्य इन दोनों का जघन्य अनुभाग संक्रम सर्वघाती द्विस्थानिक रूप से समान है।
हास्य का भी द्विस्थानी होती है, होता है
सर्वघाती बताया, तो भी सम्यक मिथ्यात्व के विषय रूप दारू समान अनंत विभाग को उल्लंघन कर आगे इसका अवस्थान देखा जाता है। यानी वो जो द्विस्थानिक बताया है इसका भी द्विस्थानिक है, उसका भी द्विस्थानिक है, परंतु और आगे तक उसका पाया जाएगा और आगे तक के स्पर्धक उसमें आ जाएगा।
हास्य का बंधन चतुर्थानिक ही होता है,
बंधन की बात नहीं है, सत्ता की बात है और संक्रमण की बात है।
तो यहाँ पे सत्ता में से इतना चतुर्थानी जैसे द्विस्थानीय हो जाएगा, संक्रमण की अपेक्षा वो इतना द्विस्थान दो स्थान का घात हो जाएगा।
असंगी एकेंद्री की बात है ना, सबका हाँ। घात होता है, हत समुत्पत्ति सब में करेगा, सभी कर्मों में हत समुत्पत्ति करेगा ना किसने?
तो सभी कर्मों में द्विस्थानिक हो जाएगा मैक्सिमम, अरे मिनिमम।
अभी द्विस्थानिक फिर भी वो सर्वघाती रूप है ना,
हाँ।
तो सर्वघाती रूप द्विस्थानिक कहेंगे। परंतु पूरा दारू का जो अनंत बहुभाग तक भी वो द्विस्थानिक ही कहेंगे ना उसको।
यहाँ पे तो द्विस्थानिक ही बताया, चतुर्थानिक के बदले द्विस्थानिक,
चतुर्थानिक क्योंकि उसने हतसमुत्पत्ति कर दिया, जघन्य देख रहे हैं, एकेंद्रियों के जघन्य, एकेंद्रियों के योग्य जघन्य देख रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन है? आपने कुछ पढ़ा है अभी पांच दिन में?
नहीं, मैं देख रहा था, मेरे को मिला नहीं।
हाँ, इसीलिए आप प्रश्न है आपको। अनुभाग में अल्प बहुत जो हमने देखा था उत्कृष्ट का 259 से जघन्य का है, वो वहां तो वो केवल दंडक पूरा ही बताया था। पहले लोभ का, लोभ माया मान वगैरह वगैरह हमने हमें जो अभी हमने देखा है ना वही हाँ। वहां पर है,
बाकी कुछ उधर बताया नहीं है।
वो विभक्ति में कुछ अलग था, संक्रमण में कुछ अलग लिया है, फिर भी हम एक केंद्रियों में अगर देखा होगा तो
नहीं, एक केंद्रियों में इसको कुछ दिया ही नहीं है। समुत्पत्ति में स्थिति का घात होता है, उसमें चार स्थान के बदले द्वि स्थान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो मेनली तो स्थिति के घात की अपेक्षा हमने देखा है। हता समुत्पत्ति जीव जो स्थिति कम करता है,
दोनों कम करता है, हता समुत्पत्ति में अनुभाग भी कम हो जाता है, वही तो हम देख रहे थे। अनुभाग विभक्ति में जो जो हता समुत्पत्ति की बात आई है वो अनुभाग को कम करने की अपेक्षा आई है। ये तो इसका हमने जघन्य का स्वामी देखा था ना, असंगी में जो हत समुत्पत्ति का असंगी के योग्य करके आया है और नरक में उत्पन्न हुआ है,
उससे पता है
उसी को लेना है। ये नरक की बात, अभी हम एकेंद्रियों की देख रहे हैं, एकेंद्रियों में डायरेक्ट उसने हत समुत्पत्त कर दिया। देखो क्या है, मिथ्यात्व और आठ कषाय को तो हम हत समुत्पत्ति वाले को ही जघन्य लेते हैं पूरे योग में, एक इंद्रियों की बात छोड़ दो, परंतु हास्यादि को वहां नहीं लिया था उसके बाद,
क्योंकि वो सपना में,
क्योंकि वो तो क्षपणा में उसका
अंतरकरण के पश्चात सपना में,
इसलिए उसकी बात वहां नहीं ली, उसको जो उसके उसका स्वामित्व अलग बताया। अब मात्र एक इंद्रियों की ही हम बात कर रहे हैं, एक इंद्रियों में ही जघन्य लगा रहे, तो एक इंद्रियों में सभी कर्म हत समुत्पत्ति के द्वारा जघन्य हो जाएंगे, वहां तो कोई क्षपणा का कार्य नहीं है। यदि सभी चारों गतियों की बात करते तो जघन्य कहाँ होता है, तो क्षपणा में होता है हास्यादि का, परंतु एक इंद्रियों के लिए जघन्य कब होगा, जब हत समुत्पत्ति करेगा। फिर भी अल्पभूतव क्यों, क्योंकि प्रकृति विशेष के कारण, हर एक प्रकृति में समान अनुभाग नहीं होगा, प्रकृति विशेष का ही अर्थ होता है। तो उसमें एक इंद्रियों में सम्यक का देखा, फिर सम्यक मिथ्यात्व का, तीसरे पॉइंट पर हास्य का, उसका कारण हम पढ़ते हास्य की, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और हास्य इन दोनों का जघन्य अनुभाग संक्रम सर्वघाती द्विस्थानिक रूप से समान है, तो भी सम्यक मिथ्यात्व के विषय रूप दारू समान अनंत में भाग को उल्लंघन कर आगे इसका अवस्थान देखा जाता है
हास्य का
अवस्थान है वो तो जघन्य अनुभाग संक्रम है उसके जो कुछ जितने कोई द्विस्थानिक कुछ स्पर्धक हो गए वो उसके आगे तक पाए जाते हैं शेषानम जहाँ सम्मा इट्ठी बंधे तहाँ कायो वो शेष प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग संक्रम का अल्प बहुत्व जिस प्रकार सम्यक दृष्टि बंध में किया है उस प्रकार करना चाहिए। यहाँ पर सूत्र में सम्मा इट्ठी बंधे ऐसा निर्देश करने से सम्यक के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के जघन्य बंध का ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा सम्यक दृष्टि के बंध से बाहर हुए अनंतानुबंधी आदि के अल्पभूतव का विधान नहीं बन सकता क्योंकि वो सम्यक दृष्टि के वो नहीं बनती है। यह कथन मात्र विशुद्ध परिणामों का उपलक्षण रूप है, इसलिए विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के बंध में जिस प्रकार का अल्पभूतव कहा है उसी प्रकार का ही यहाँ पर शेष प्रकृतियों का करना चाहिए क्योंकि विशुद्धि निमित्तक सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म रूप से जघन्यपने को प्राप्त हुए उक्त प्रकृतियों के अनुभागों का विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के बंध समान होने में कोई विरोध नहीं। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो सूक्ष्म एकेंद्रियों की जो विशुद्धि है उसके कारण जितना हतसमुत्पत्तिकपना पाया जाता है और वहाँ जो अल्प बहुत्व है वैसा ही सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के हो वहाँ भी विशुद्धि ज़्यादा है। इसलिए मैंने जब तक अनंतानुबंधी आदि सबका बंद हो रहा है उसकी बात चल रही है। वहाँ अब उसकी उच्चारणा को बतलाते हैं। यथा हास्य के जघन्य अनुभाग संक्रम से शेष कह दिया ना, अभी उसको खोलकर बता रहे। रति का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा
चार नंबर
लगाना, उससे पुरुष वेद का 5 नंबर पर जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, उससे स्त्री वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, उससे जुगुप्सा का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, उससे हाँ 7 अभी 8 भय को 8वें नंबर पर भय का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, 9 नंबर पर उससे शोक का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, 10वें में उससे अरति का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, अब 11 उससे नपुसक वेद का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, 12 नंबर पर उससे अप्रत्याख्यान मान को पहले लिए ना, उसका जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है, कौन सा नंबर हुआ अभी
12 नंबर,
अब 13 नंबर डालना, उससे अप्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है, 14 नंबर पर उससे अप्रत्याख्यान माया का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है, एक ही कषाय में जब 4 भाग करते तो विशेष अधिक लेना, 15 पर उससे अप्रत्याख्यान क्या रह गया, 9 का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है, 15 पर उससे प्रत्याख्यान मान का जघन्य अनुभाग संक्रम अनंत गुणा है क्योंकि अभी अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान में आ गए हम, मान 16, मैंने 15 कहा 16 है,
नहीं 16 नंबर है,
अभी प्रत्याख्यान के आगे विशेष अधिक 4 में लगाएंगे तो 17 में अभी उससे प्रत्याख्यान क्रोध का जघन्य अनुभाग संक्रम विशेष अधिक है, 18 उससे प्रत्याख्यान माया का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। 19 पर उससे प्रत्याख्यान लोभ का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। उसके बाद अभी मान संज्वलन का जघन्य अनुवाद संक्रम अनंत गुणा है। उससे क्रोध संज्वलन का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। उससे माया संज्वलन का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। उससे लोभ संज्वलन का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। 23 हो गए ना अभी। अब अनंतानुबंधी के 4 ले लेंगे। उससे अनंतानुबंधी मान का जघन्य अनुवाद संक्रम अनंत गुणा है। उससे अनंतानुबंधी क्रोध का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। उससे अनंतानुबंधी माया का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। और 27 नंबर पर उससे अनंतानुबंधी लोभ का जघन्य अनुवाद संक्रम विशेष अधिक है। और 28 पर उससे मिथ्यात्व का जघन्य अनुवाद संक्रम अनंत गुणा है। इस प्रकार इस दिशा से शेष मार्गणाओं में भी अल्पभूतव जानकर करना चाहिए। उन्होंने एक इंद्रिय एक मार्गणा लगाकर बताई। देखो हमने जो देखा था ना, अधिक से कम की ओर हमने पहले मिथ्यात्व को रखा था, फिर अनंतानुबंधी को लोभ माया क्रोध मान रखा, फिर संज्वलन रखा था, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान। तो इसको हम उल्टे ऑर्डर से ले जा रहे हैं। हमने पहले में पहले कषाय में अप्रत्याख्यान वाले को लिया, मान को लिया, फिर क्रोध को लिया, फिर माया को, लोभ को। प्रदेश बंटवारे में भी हमने इसी क्रम से देखा था। अनुभाग का जैसा हाँ। क्रम है वैसे प्रदेशों का बंटवारा भी ऐसा ही देखा। अभी शिविर में लिया था ना आप थे ना, प्रदेश बंटवारा इसी पद्धति से जैसे अनुभाग का हमने देखा था ना, अधिक से कम की ओर वैसा ही प्रदेशों का भी बंटवारा होता है। वहां तो सर्वघाती देशघाती करके फिर हाँ। अलग अलग होता है हाँ। इस प्रकार अल्प बहुत्व के समाप्त होने पर 14 अनुयोग द्वार समाप्त हुए। अब भुजगार का प्रकरण शुरू होगा। यहाँ तो हाँ हाँ 24 मणियोग धारणी सम्मता ने 24 चाहिए, 24 होते हैं ना हमेशा, हम 24 देखते हैं। चौबीस अच्छा देख लिया आपने हाँ, क्योंकि अनुयोगों को हमने नंबर नहीं डाले थे इस बार। अब भुजगार के बात करेंगे। भुजगारे 13 अनियोग दाराणी, भुजगार अधिकार का प्रकरण है, उसमें 13 अनियोग द्वार चाहिए। अनियोग द्वार होते हैं, उद्धार नहीं उद्वार, द्वार। चौबीस अनियोग द्वारों का कथन समाप्त होने पर यह भुजगार भू करना बराबर। भुजगार संज्ञा वाला अधिकार किस लिए आया है? भुजगार का कथन यहाँ क्यों आया है? भुजगार में जब भुजगार कहते हैं तो भुजगार अल्पतर अवस्थित जो कुछ है सब समझ लेंगे। वो कहते हैं जिसके भीतर अजगन्य और अनुत्कृष्ट भेद गर्भित है, ऐसे जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से दो प्रकार के अनुभाग संक्रम के अवस्था भेदों का कथन करने के लिए यह अधिकार आया है। क्या कहना चाहते? जिसके भीतर अजघन्य और अनुत्कृष्ट गर्भित है। जब जघन्य का कथन करते हैं तो जघन्य के साथ अजघन्य की बात उसमें गर्भित होती है, जो जघन्य नहीं वो अजघन्य। जब उत्कृष्ट की बात करते हैं तो जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट ये सिद्ध होता है। तो इसलिए कहते हैं तो उसके जो अवस्था भेदों का कथन करने के लिए, यानी पहला कितना था और बाद में कितना हो रहा है, बढ़कर होगा तो कहेंगे बुजगार, घटकर होगा तो कहेंगे अल्पतर, वो कथन करने के लिए अधिकार आया। क्योंकि उसके अवस्था रूप यानी अनुभाग के जो अवस्थाएं हैं अलग अलग, उस रूप भुजगार आदि पदों का यहाँ पर समुत्कीर्तना आदि 13 अनियोग द्वारों के आश्रय से पृथक पृथक कथन उपलब्ध होता है। समुत्कीर्तन यानी भुजगार है अल्पतर है वो कथन करना, वो है समुत्कीर्तन। हम हमेशा ही भुजगार आदि में वो 13 अनियोग द्वार देखते आए हैं। तथ्य अर्थपदम, अब ये समझने के लिए यहाँ अर्थपद बताएंगे। उस विषय में यह अर्थपद है, उस भुजगार संक्रम के विषय में भुजगार आदि पदों का स्वरूप विषयक निर्णय को उत्पन्न करने के लिए अर्थपद का कथन करते हैं। अर्थपद से हमें उसका स्वरूप ख्याल में आता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वह अर्थपद क्या है ऐसी जिज्ञासा के अभिप्राय से पृच्छा सूत्र को कहते हैं। यानी यह अर्थपद है तो यह है तो क्या है ऐसा पूछेंगे तो तम जहा यानी यथा, यह सूत्र सुगम है। जानी एण्यम फद्दयानी संकामेदी अनंतरो सक्का विदे अब्बदर संकमादो बहुगाणित्ती ऐसे भुजगारो। भुजगार किसको कहना उसकी बात करें। जिन स्पर्धकों को वर्तमान समय में संक्रमित करता है वे अनंतर पूर्व समय में संक्रम को प्राप्त हुए अल्पतर संक्रम से बहुत है, यह भुजगार संक्रम। क्या कहते हैं, पूर्व समय में
कम
अनुभाग का संक्रम करता था, अभी अधिक करता है, अधिक स्पर्धक उसमें है अनुभाग में संक्रमित होने वाले, तो उसको कहेंगे वो भुजगार है। अब भुजगार संक्रम के स्वरूप का कथन करने वाले इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। जिन अनुभाग स्पर्धकों का एपीहम, अभी एन्यम लिखा है, एपीहम कहाँ है, ऊपर दो बार लिखा सूत्र में भी और उसके नीचे भी, जानी अनुभाग फद्दयानी एन्यम वर्तमान समय संका में भी।
एपीहम कब रहा है,
एपीहम ने एन्यम, हाँ बड़ा ना हो एन्यम जैसा सूत्र में लिखा है। क्या कहते हैं, जिन अनुभाग स्पर्धकों का एन्यम अर्थात वर्तमान समय में संक्रमण करता है वे बहुत है। कौन बहुत है, अनुभाग स्पर्धक, स्पर्धक ज्यादा है वर्तमान में, स्पर्धक ज्यादा है किससे बहुत है, अनंतरो सक्का विदे अपदर संकमादो अर्थात अनंतर व्यतीत हुए पूर्व समय में संक्रम रूप से परिणत हुए स्तोकतर यानी अधिक
कम
स्पर्धक कलाप से यानी स्पर्धकों के समूह से बहुत है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ऐसे भुजगारो अर्थात इस प्रकार के लक्षण वाला भुजगार संक्रम है ऐसा जानना चाहिए। ऐसा ऐसा जो है उसे भुजगार कहते हैं, तो ऐसे ऐसे भुजगारो यह भुजगार है, समझ में। वर्तमान में क्यों बढ़ गए, क्योंकि आवली के पहले वो ज्यादा बंद किया था, इसलिए संक्रमण की बात चल रही है ना। एक समय पूर्व जितने स्पर्धकों का संक्रमण हो रहा था वर्तमान समय में अधिक स्पर्धक हुए, क्यों हुए,
आवली
एक आवली पहले वो बंद थे इसलिए। आवली पहले ऐसी वहां बढ़कर बंद हुआ तो यहाँ बढ़कर संक्रमण हुआ। स्तोकतर स्पर्धकों का, स्व हो गया स्पर्धकों का, संक्रमण करने वाला जीव जब उनसे बहुतर स्पर्धकों का संक्रम करता है, यानी जो जीव कम स्पर्धकों का संक्रमण कर रहा है वो अधिक स्पर्धकों का संक्रमण शुरू करता है, तो उसको कहेंगे भुजगार। उस समय भुजगार संक्रम होता है, यह इसका भावार्थ है। ओसक का विदे बहुदरादो एन्निम अपदराणी शंका मेदिति ऐसा अपदरों। ओसक का विदे ने जो अनंतर पूर्व जो बीत चुका है, अनंतर पूर्व समय में संक्रम को प्राप्त हुए बहुतर स्पर्धकों से वर्तमान समय में अल्पतर स्पर्धकों को संक्रमित करता है, यह अल्पतर संक्रम है। क्यों? उसका जो अनुभाग का कम होना जो है कांडक है, या जो कोई घटना
कांडक ही होगा ना ये तो,
हाँ, तो उसको कहेंगे उसके कारण अभी अल्पतर हुआ। हमने देखा अंतर मुहूर्त में तो उत्कृष्ट है वो तो अनुत्कृष्ट हो जाता है, या कांडक घात होते तो उसके कम हो जाता है। इस सूत्र में ओसक का विदे है, विदे चाहिए, ओसक का विदे मूल इसमें विदे लिखा है, एक था ओसक का विदे शब्दो, ठीक है दोनों चलते हो गए। ओसक का विदे शब्द अनंतर व्यतीत हुए समय का वाची है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, अथवा पहले के समय में किए गए बहुतर संक्रम से एन्निम ओसक का विदे यहाँ दिया है ना, अर्थात वर्तमान समय में अपकर्षित करने पर अर्थात कम करने पर अल्पतर स्पर्धकों को संक्रमित करता है, यह अल्पतर संक्रम है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है, शेष कथन सुगम है। ये तो भुजगार अल्पतर हमने बहुत बार देखा था, यह संक्रमण का प्रकरण चल रहा है, अनुभाग संक्रमण का, किसी एक समय में जितना करता है दूसरे समय में अधिक अनुभागों का यानी अधिक स्पर्धकों का संक्रमण करने लगे तो भुजगार होगा। पूर्व समय में अधिक का करता था
कम का कर,
अभी कम का करने लगे तो कहेंगे अल्पतर। ओसक का विदे निम च तत्तियानी शंका में दीप्ति ऐसा अवठित संक्रम, अनंतर व्यतीत हुए समय में और वर्तमान समय में उतने ही स्पर्धकों का संक्रम करता है, यह अवस्थित संक्रम है। जितना पहले करता था उतना ही दूसरे समय में कर रहा है तो उसको कहेंगे अवस्थित संक्रम। अनंतर व्यतीत हुए समय में और वर्तमान समय में उतने ही स्पर्धकों का संक्रम अवस्थित संक्रम है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ओसक का विदे असंक्रमादो एन्निम शंका में दीप्ति ऐसा अवत्तव संक्रमो, अनंतर व्यतीत वो व्यतीत हुआ है, अनंतर व्यतीत हुए समय में यानी जो बीत गया है समय, संक्रम न करके यानी तब वो असंक्रामक था अब वो संक्रामक हो गया तो उसको क्या कहेंगे अवक्तव्य संक्रम। कितने देखे हमने मंजुबेन, भुजगार अल्पतर अवस्थितर अवक्तव्य। ओसक का विदे अर्थात अनंतर व्यतीत हुए समय में, असंक्रम से अर्थात संक्रम विरह लक्षण अवस्था विशेष से आकर, संक्रम विरह ने उसका अंतर चल रहा था यानी असंक्रामक था तो असंक्रामक से आकर एन्निम अर्थात वर्तमान समय में शंका मेदी अर्थात संक्रम पर्याय से परिणत कराता है, यानी पहले असंक्रामक था अभी संक्रामक हुआ। एस अर्थात इस प्रकार के लक्षण वाला अवक्तव्य संक्रम है, असंक्रम रूप अवस्था के बाद जो संक्रम होता है। हमने देखा ना उत्सम श्रेणी में वह असंक्रम रूप हो जाता है, या अनंतानुबंधी का असंक्रम रूप हो जाता है विसंयोजना में, या सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का असंक्रम रूप हो जाता है, फिर उसकी सत्ता आती है असंक्रम रूप, तो उसको वहां हम अवक्तव्य कहेंगे। यह अवक्तव्य व्यय हुआ, यह इस कथन का भावार्थ है। एदेन अठ पदेन सामित्तम, अब इस अर्थ पद के अनुसार स्वामित्व का कथन करते हैं। यहाँ तो केवल रूल बताया है किसको क्या कहना, अभी वो किसके होता है क्या होता है उसकी बात यहाँ बताएंगे। इस अनंतर पूर्व कहे गए अर्थ पद के अनुसार जिनके स्वरूप का निर्णय कर लिया है, ऐसे भुजगान आदि पदों के स्वामित्व को इस समय बतलाते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है। हमेशा ही शास्त्रों में ग्रंथों में कोई नया विषय बता रहे हैं तो मुनिराज पहले बताएंगे वहां, अब मैं इसका वर्णन करूंगा। शंका, यहाँ पर स्वामित्व आदि की योनि रूप समुत्कीर्तना का सूत्रकार ने कथन क्यों नहीं किया? योनि रूप है ने स्वामित्व के लिए कारणभूत, पहले समुत्कीर्तना बताएंगे, समुत्कीर्तना बताएंगे कि है तो उसका स्वामित्व सिद्ध होगा। तो इसके कहते स्वामित्व आदि की योनि रूप, योनि रूप है ने उत्पन्न कराने रूप जो समुत्कीर्तना का अधिकार है, यानी उसमें कारण रूप कहेंगे हम, तो उसका कथन क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं क्योंकि समुत्कीर्तना का कथन सुगम है, इस अभिप्राय से सूत्रकार ने उसका कथन नहीं किया। यानी वो बस भुजगार होता है, अल्पतर होता है, अवस्थित होता है, अवक्तव्य होता है, ये हुआ है समुत्कीर्तना। तो वो तो ख्याल में आया अर्थपद से ही होता है और स्वामित्व से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर व्याख्यानाचार्यों को समुत्कीर्तना करनी चाहिए, यानी उसका व्याख्यान जो करते हैं मूल सूत्र पर वे समुत्कीर्तना करके बताएंगे। यथा समुत्कीर्तनानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ प्ररूपणा का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है, इतनी विशेषता है। 12 कषाय और 9 कषायों का अवक्तव्य संक्रम भी है जो अनुभाग विभक्ति में संभव नहीं है। क्यों? वहां तो सत्ता तो बनी रहती है, उपशमित है तो भी सत्ता है, परंतु हम यहाँ संक्रम को देख रहे हैं। उपशमित अवस्था में चारित्र मुनि की उपशमा होती है तब संक्रमण भी रुक जाता है, इसलिए इसमें तो अवक्तव्य है, अनुभाग विभक्ति में नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य त्रिक में ही वो तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेगा, तो उसमें तो संभव है। आदेश से सब नारकी सब तिरियंच मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में अनुभाग विभक्ति के समान बंध है। विशेषार्थ, अनुभाग विभक्ति में सत्कर्म की अपेक्षा यानी सत्ता वाली की अपेक्षा जिस प्रकार ओघ और आदेश से समुत्कीर्तना का कथन किया है, उसी प्रकार वह सब कथन यहाँ भी बन जाता है। मात्र उपशम श्रेणी में 12 कषा और 9 कषायों का उपशम हो जाने के बाद जब तक ऐसा जी उतरकर पुनः नीचे नहीं आता या मरकर देव नहीं होता, तब तक संक्रम नहीं होता। उसके बाद संक्रम होने लगता है, इसलिए यहाँ पर ओघ से इन प्रकृतियों के अवक्तव्य संक्रम का निर्देश अलग से किया है। साथ ही यह संक्रम मनुष्य त्रिक में बन जाने से यहाँ पर इसे भी अलग से बतलाया है, शेष कथन स्पष्ट ही है। इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई। यहाँ मूल में नहीं बताई थी चूर्णी चित्रकार ने, व्याख्यानाचार्य ने उसको खुलकर बताया। इसमें एक ही बात अधिक होती है, अवक्तव्य भी है जो उपशम श्रेणी से उतरते हुए प्राप्त होता है या मरकर देव होने से प्राप्त होता है।
ये उच्चारण की बात नहीं की, व्याख्यानाचार्य की बात,
व्याख्यानाचार्य से कहीं उच्चारणाचार्य की, जहाँ जो बात है उसको कहेंगे। मिच्छत्तस्य भुजगार संकामगो कोहोई, क्योंकि यहाँ पर बात मात्र मुनि की नहीं है, उत्तर प्रकृतियों की है। तो मिथ्यात्व का भुजगार संक्रमण, पहले कम स्पर्धकों का संक्रमण कर रहा था, अभी बढ़ाकर संक्रमण कर रहा है। तो मिथ्यात्व का भुजगार संक्रामक कौन होता है, यानी अधिक बंध कौन करेगा? बंधे ही मिथ्या दृष्टि करेगा, दूसरा कोई बंध ही नहीं करेगा। मिथ्यात्व का बंध मात्र मिथ्या दृष्टि ही करेगा। तो कहते हैं, ये प्रश्न का प्रश्न को समझा रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, देव या नारकी, इनमें से कौन होता है इत्यादि विशेष की अपेक्षा रखने वाला यह सूत्र है। क्या मिथ्या दृष्टि कर सकता है, सम्यक दृष्टि कर सकता है, इसकी बात यहाँ पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर देते हैं, मिथ्या इट्ठी अन्नतरो, अन्यतर मिथ्या दृष्टि होता है। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि पद के निर्देश द्वारा सम्यक दृष्टि का निषेध किया है। निषेध किया है ना, सम्यक दृष्टि जीव भुजगार बंध को नहीं करेंगे, उसको संक्रमण नहीं करेंगे, बंध ही नहीं करेंगे। तो संक्रमण की बात, संक्रमण तो होगा परंतु भुजगार संक्रमण नहीं होगा, ये बात बताना था। हाँ, अवस्थित रह सकता है, अल्पत्र हो सकता है। हाँ, अन्य तरह ने कोई मिथ्या कोई भी एनी बड़ी यानी अभी की कौन करेगा, जो अधिक बंद करेगा तो, परंतु मिथ्या दृष्टि है इसलिए अन्य तरह कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि के ग्रहण करने के लिए, यानी किसी विशिष्ट गति का मिथ्या दृष्टि ऐसी बात नहीं है, इसलिए चारों गतियों के ग्रहण करने के लिए अन्यतर कहा। और अन्यतर कहने का कारण क्या है? अवगाहना आदि विशेष का निषेध करने के लिए। बड़ी अवगाहना वाले करेंगे कि छोटे अवगाहना वाले करेंगे, तो ऐसा कोई उसमें
नियम नहीं।
हाँ, आदि में भी अन्य अन्य बातें, क्रोध का उदय वाला करेगा कि मान का उदय वाला, ऐसा कुछ बात उसमें नहीं होगी, इसलिए अन्यतर कह दिया। इसलिए मिथ्या दृष्टि ही मिथ्यात्व के अनुभाग का भुजगार संक्रामक होता है यह सिद्ध हुआ। मिथ्या दृष्टि में कोई उसकी विशेषताएं नहीं बतानी है। क्या एक इंद्रिय भुजगार कर सकेगा कि संगी पंचेंद्रिय ही करेंगे?
सभी करेंगे।
बढ़कर बांधना है ना, वो कितना उत्कृष्ट की बात नहीं चल रही है। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम अलग बात है और भुजगार अलग बात है, जितना है उससे बढ़कर करना है,
सभी करेगा।
तो एक इंद्रिय भी है, जगन ने हता समुत्पत्ति किया था, फिर बढ़कर बांधा तो भुजगार हुआ उसका, तो सभी में होगा। नहीं है ना, इसीलिए बोला है। कहाँ बैठा है उसकी क्या बात है?
मिथ्या दृष्टि को तो हो सकता है ना,
वो तो उसके अभी उसको अधिक बंध कब करेगा, अधिक संकलेश होगा तब। यानी हर एक मिथ्या दृष्टि करता है ऐसा कहाँ लिखा है? जो अधिक बंध करेगा, बढ़ाकर अनुभाग को बांधेगा, आवली काल के बाद बढ़ाकर संक्रामक होगा। अधिक बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि ऐसा लेना वहाँ पर अधिक
ठीक है। समोसारण में जो मिथ्या दृष्टि बैठा है उसका ज्यादा बंद नहीं हो सकता है?
क्यों नहीं होगा?
होगा
वो तो सामने का छोड़कर अभी घर की बात सोच रहा है। मस्करी वो तो छोड़कर चला गया, क्यों अब मारी जी को क्या हुआ, अपने को क्या पता? वो तो भगवान जानते कितना उसने बढ़ा कर बांधा कि नहीं बांधा। क्या
हवा
ये कौन जीव है, ये मिथ्या दृष्टि, इतनी बात बताना थी। सम्य दृष्टि नहीं है और मिथ्या दृष्टि में किसी विशेष गति की बात नहीं की उन्होंने,
कॉमन।
कॉमन। अब कहते अपदर अवस्थित संकामों को हुई, अल्पतर करने वाला और अवस्थित वाला कौन है?
मिथ्या दृष्टि या सम्य
दृष्टि। अल्पतर और अवस्थित संक्रामक कौन होता है? तो कहते यह सूत्र सुगम है। उसके जवाब में कहते अन्नदरो,
कोई भी हो,
यानी उसमें ना समय दृष्टि पर लगाया ना मिथ्या दृष्टि लगाया, क्योंकि अधिक था वो कम कोई भी कर सकता है ना, क्योंकि कम अधिक तो होता रहता है। अधिक करने वाला तो मिथ्या दृष्टि ही होगा, परंतु अल्पतर और अवस्थित करने वाले दोनों हो सकते हैं। सूत्र में यह अन्यतर पद का निर्देश मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि इनमें से अन्यतर जीव के ग्रहण के लिए आया है, क्योंकि उन दोनों में ही प्रकृत स्वामित्व का निषेध नहीं है। इसलिए मिथ्या क्या कराना बराबर, मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि कोई भी मिथ्यात्व के अल्पतर और अवस्थित संक्रमों का स्वामी है, यह सिद्ध हुआ। अब कहते अवत्तव संकामो नत्थी, जो नत्थी कहा वो मिथ्यात्व की बात चली आ रही है। मिथ्यात्व प्रकृति पर हम चार लगा रहे हैं, कौन से? भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य। तो मिथ्यात्व में अवक्तव्य नहीं होगा, क्योंकि उपशम श्रेणी में चारित्र मौनी का तो असंक्रामक हो जाता है, परंतु मिथ्यात्व का असंक्रामक हो जाए स्थिति की अपेक्षा नहीं चल रही है। प्रकृति संक्रमण में और स्थिति संक्रमण में हमने अलग से देखा था, उसकी बात यहाँ नहीं, यहाँ अनुभाग संक्रम की बात चल रही है। तो मिथ्यात्व का तो अनुभाग संक्रम चलेगा ही, इसलिए कहते मिथ्यात्व का अवक्तव्य संक्रामक नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व की सदाकाल असंक्रम रूप अवस्था से संक्रम की उत्पत्ति नहीं उपलब्धि होती है। सदाकाल ने कभी भी एवं शेषाणम कम्माणम सम्मत्त सम्मा मिच्छत्त वज्जाणम, ये जो अभी हमने देखा था
सम्यक और सम्यक
मिच्छत्त, कोई भी जो मिथ्या दृष्टि है वो तो भुजगार करेगा, और अल्पतर अवस्थित करने वाला कोई भी जीव होगा, और अवक्तव्य नहीं है, ये जो कथन मिथ्यात्व के बारे में है। तो कहते अन्य में ऐसा ही है, परंतु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर
चारित्र मौनी में तो अवक्तव्य
वो बताएंगे। जो जो नवरी है वो सब कहेंगे, एवं शेषाणम कम्माणम सम्मत्त सम्मा मिच्छत्त वज्जाणम, इसी प्रकार सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष कर्मों का स्वामित्व जानना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व के भुजगार आदि पदों के स्वामित्व का कथन किया है, उसी प्रकार शेष कर्मों का भी करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व के स्वामित्व कथन से इन कर्मों के स्वामित्व कथन में कोई विशेषता नहीं है, यानी कौन करता है उसके कथन में कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पर जो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का निषेध किया है, सो इन दोनों प्रकृतियों में विशेष फर्क संभव है, इतना कथन करना इसका फल है। और वह जो फर्क है उसे आगे कहेंगे, जो अंतर है उनमें, जो विशेषता है वो बाद में कहेंगे। यहाँ केवल इतनी बात बताइए, इन दोनों को छोड़कर अन्य का कथन ऐसा ही है, अब उसमें भी जो कोई डिफरेंस है वो भी कहेंगे। यहाँ पर स्तोकतर विशेष है इस बात का ज्ञान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, ठीक है ना, शेष कर्मों का भी ऐसा है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए कहते हैं स्तोकतर विशेष है। नवरी अवत्तवगो च अस्ति, मिथ्या तो में क्या कहा था? अवत्तव संकामो नत्थी,
यहाँ पे है।
अब यहाँ कहते परंतु इतनी विशेषता है कि शेष कर्मों में अवक्तव्य संक्रमण है, इतनी विशेषता है, इनका अवक्तव्य संक्रामक भी होता है, अन्य तो होते ही है, ये भी होता है, क्योंकि बाहर कषाय और नौ नौ कषायों का उपशम श्रेणी से तथा अनंत अनुबंधियों का विसंयोजना पूर्वक संयोग होने पर अवक्तव्य संक्रम देखा जाता है। इसीलिए 12 कषाय और 9 कषायों का अवक्तव्य संक्रामक कौन रहता है? जो सर्वोपशमना से गिरने वाला अथवा मरकर देव होता है, वह प्रथम समय में संक्रमण करने वाला जीव इनका अवक्तव्य संक्रामक होता है। या तो उसी भाव में रहेगा, नीचे आएगा, या मरकर देव में चला जाएगा। अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य व्यय करना व्यय हुआ है। उसका अवक्तव्य ने जो संक्रामक नहीं था और संक्रामक हुआ, उसको कौन सा कहेंगे? विसंयोजना के बाद संयोजना करने वाला, एक अवली के बाद वो संक्रमण शुरू करेगा। अवक्तव्य के लिए उसको जघन्य ही होना चाहिए, कोई बात नहीं। जघन्य तो विशिष्ट परिणाम के कारण होता है, और चाहे कुछ भी हो, जघन्य अजघन्य, तो उसको हम अवक्तव्य कहेंगे। तो अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य संक्रामक कौन होता है? विसंयोजना के बाद संयुक्त होकर जिसका एक आवली काल गया है, वह इनका अवक्तव्य संक्रामक होता है। इस प्रकार यहाँ पर स्वामित्व करना चाहिए, यह इसका भावार्थ है। इस प्रकार इसका कथन करके अब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्वगत स्वामित्व की भिन्नता दिखलाने के लिए आगे की सूत्र परिपाटी आई है। उसमें क्या विशेषता है उसको अब यहाँ बताएंगे। हो गए समय? हाँ, कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सोझे लोकालो सोवाणी मस्तकन सदा देखहु।